शास्त्रों में और सत्संग में अक्सर हमको एक बात पढ़ने को सुनने को मिलती है। एक शब्द है अंतःकरण। इस अंतःकरण के बारे में कई एक्सप्लेनेशंस सुनने को पढ़ने को मिलते हैं, परंतु इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाता कि वास्तव में अंतःकरण है क्या। कहीं लिखा होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार को मिलाकर अंतःकरण कहते हैं, कहीं लिखा होता है मन को ही अंतःकरण कहते हैं। इसीलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। महर्षि रमण ने एक जगह इसको सरल करने के लिए एक बार कहा, उन्होंने कहा अहंकार बुद्धि चित्त और मन ये चार अंग अंतःकरण के कहे जाते हैं, लेकिन अहंकार और बुद्धि को यदि एक कर दिया जाए और चित्त और मन को एक कर दिया जाए तो फिर इसके दो ही अंग रह जाते हैं, अहंकार और मन। वैसे यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो महाराज जी समता विलास में खुद लिखते हैं कि कर्म का कर्ता बनना ये अहंकार है, जब कर्ता है तो भोक्ता भी वही है, और निश्चय करना ये बुद्धि है, मनन करना इसको मन कहते हैं या संकल्प शक्ति कहते हैं, फिर चित्त क्या है, स्मरण करना इसको चित्त कहते हैं। तो जहां से स्मृति आती है उसको चित्त कह देते हैं, जहां संकल्प उठते हैं उसको मन कह देते हैं। इसीलिए महर्षि रमण ने कहा कि इस स्मरण में भी संकल्प है और मन के अंदर जो वृत्तियां उठती हैं उसमें भी संकल्प ही है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक ही क्यों ना कह दिया जाए, केवल मन। तो महाराज जी ने भी इसको ज्यादातर जहां भी एक्सप्लेनेशन लिखा है या जहां तक भी उन्होंने ये इस ज्ञान आध्यात्मिक विद्या को समझाने की कोशिश की है, महाराज जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, बुद्धि और मन। उन्होंने भी प्रैक्टिकली अहंकार और बुद्धि को एक कर दिया है और चित्त और मन को एक कर दिया है। उन्होंने भी दो ही बातें ज्यादातर लिखी हैं कि मन और बुद्धि। जैसे कि देखिए, एक पवित्र जीवन से एक वचन पढ़ रहा हूं उनका मैं, वहां से ये बात बड़ी स्पष्ट होती है। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं, और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। मेरे मन में जो संकल्प उठ रहे हैं, जो इच्छाएं उठ रही हैं, वो ठीक हैं या गलत हैं, इसको जो इस देह के अंदर सत्ता समझती है उसको वो कहते हैं, उसको बुद्धि कहते हैं। अर्थात मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं, यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती है, और जितनी बुद्धि मलिन होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित अशांत रहती है। इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता के मुताबिक है, और बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। देखिए इसमें वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि मेरी है, मन भी मेरा है। जब बुद्धि मेरी है मन मेरा है तो मैं तो वही हूं ना जो इन दोनों का मालिक है, इसका तो मैं तीसरी शक्ति हो गया। ये जो तीसरी शक्ति है इसी का नाम कर्तापन है, इसी का नाम अहंकार है, इसी का नाम जीव है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में कंट्राडिक्शन कहां खड़ा हुआ है, विरोधाभास कहां खड़ा हुआ है? विचार करने में तीन चीजें साफ नजर आती हैं। देखिए इसी वचन में आप ध्यान से सुने जरा इसको, तो इसका बड़ा स्पष्ट निर्णय हो जाता है। वो कहते हैं कि बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है, और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती है, और जितनी बुद्धि मलिन होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित अशांत रहती है। अब दो चीजें आगे देखो। एक तो वो कह रहे हैं कि बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है, मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। तो कहते हैं कि बुद्धि की पवित्रता पर ये इंद्रियों के कर्म निर्भर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं वो, कि जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती है। अब एक तत्व तो हो गया बुद्धि निश्चय करने वाली सत्ता, अब यहां सत शांति को प्राप्त होती है। इसका मतलब उन्होंने इन दो चीजों को यहां मिला दिया कि जो शांति प्राप्त करती है उसका नाम भी बुद्धि कर दिया, और जो निश्चय करती है सही गलत का उसका नाम भी बुद्धि कर दिया। जबकि इसको यदि महाराज जी के ही एक्सप्लेनेशन के अनुसार देखा जाए तो जो शांति या अशांति महसूस करती है उसको जीव कहते हैं, या उसको अहंकार कहते हैं, या उसको कर्तापन कहते हैं। तो महाराज जी ने, क्योंकि वही बुद्धि शांति महसूस कर रही है, इसका मतलब अहम को और बुद्धि को उन्होंने मिलाकर एक कर दिया। जो महर्षि रमा कह रहे हैं कि अहंकार और बुद्धि को यदि मिला दिया जाए और चित्त और मन को यदि मिला दिया जाए तो अंतःकरण के केवल दो अंग रह जाते हैं। और आगे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन चारों को मिलाकर केवल बुद्धि कह दो, या चारों को मिलाकर केवल अहम कह दो, या चारों को मिलाकर केवल मन कह दो, तब भी वही बात है। या तो आप यूं कह देते हो मैं परेशान हो रहा हूं, या यूं कहते तो कि मेरा मन परेशान हो रहा है, जबकि विचार करके देखो मन परेशान कभी हो सकता है क्या? मन तो कुछ भी है ही नहीं, मन के अंदर तो संकल्प उठ रहे हैं। संकल्प किसी को परेशान करेंगे या खुद परेशान हो जाएंगे? विचार करने की बात, मन क्या है? संकल्प का समूह ही तो मन है। तो जो संकल्प है वो खुद परेशान हो जाएगा या किसी को परेशान करेगा? आपके अंदर जो इच्छा की तरंग उठती है उसी का नाम संकल्प है। तो इच्छा की तरंग तो मुझको परेशान करेगी ना, या खुद परेशान हो जाएगी? तो इसीलिए ये चीजें, चार चीजें जो शास्त्रों में वर्णन आती हैं, सत्संगों में भी वर्णन आता है इनका, ये कई बार व्यक्ति को कंफ्यूज कर देती है। यहां तक कि आप भी जानते हैं भाई, जो तेरे मन की बात हो वो बता दे। कई बार आप मन की जगह दूसरी बात कह देते हैं, جو تیرے دل میں ہو وہ بتا دے. اب من اور دل ایک ہو گیا پھر. اسی لیے انتہکرن کو کئی جگہ ہردے بھی کہہ دیتے ہیں. انتہکرن من ہوا کیونکہ من میں سنکلپ اٹھ رہا ہے, اور ہردے کا شبد بھی ہم استعمال کرتے ہیں, اس لیے انتہکرن کو کئی بار ہردے بھی کہہ دیتے ہیں, دل بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ٹرمز ہیں جو جگہ جگہ استعمال ہوتی ہیں اور ہم ان کے الگ الگ ارتھ لگایا کرتے ہیں. لیکن شاس کو یدی سمجھنا ہے, ادھیات کو یدی سمجھنا ہے, تو ان کا تھوڑا وشلیشن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چاروں چیزیں اپنے آپ میں سوتنتر نہیں ہیں, ایک دوسرے پہ نربھر ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی. ان سب کے لیے آپ ایک شبد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, میں سوچ رہا ہوں, میں پریشان ہو رہا ہوں, میں نرنے کر رہا ہوں, میں شانت ہوں, میں اشانت ہوں, ہر چیز میں سب کیا جاتا ہے. چنتن بھی آ گیا, نرنے بھی آ گیا, اہنکار بھی آ گیا, اور شانتی اشانتی بھی آ گئی. تو اسی لیے اس دیہ میں دو ہی ستا ہیں, ایک جیو ستا ارتھات میں, اور ایک ایشوریہ ستا جس کے آدھار پر اس دیہ کا جیون چل رہا ہے, یا یوں کہیں کہ جس کے آدھار پر میرا جیون چل رہا ہے. میں اپنے آپ میں سوتنتر ستا نہیں ہوں, میں ایشور پر نربھر کرتا ہوں. یدی میں سوتنتر ہوتا تو سارا جگت بھی سوتنتر ہوتا, کیونکہ مہا جی کہہ رہے ہیں پریمی سنسار کچھ بھی نہیں ہے, یہ اندریوں کا اچمبھا ماتر ہے, اندریوں کا اچمبھا ماتر ہے. اس لیے مہرشی رمن کہتے ہیں جس سمے تم گہری نیند میں سو جاتے ہو, جس کو سشپتی کہتے ہیں, اس سمے یہ سنسار نہیں رہتا, تم پھر بھی رہتے ہو. یدی تم نہیں ہوتے تو جاگنے کے بعد یہ بات کیوں کہتے کہ میں بڑی چین کی نیند سویا؟ جیسے ہی تمہارا من جاگا, جیسے ہی تمہاری اندریاں جاگی, ویسے ہی یہ دیہ اور سنسار کا بوجھ تم کو ہونے لگا. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ اندریوں کا اچمبھا ماتر. اور اسی پرکار جب یہ من اس ایشوریہ ستا میں لین ہوتا ہے, جس سمے سادھنا کے انترگت یہ من اس چیتن ستا میں یا آتم ستا میں یا ایشوریہ ستا میں لین ہوتا ہے, اس سمے یہ دیہ اور سنسار بھی اسی ستا میں لین ہو جاتا ہے. اسی لیے اس سمے ان کا کوئی بودھ جیو کو نہیں ہوتا, کیونکہ اندریوں کا فنکشن جب تک ہے تبھی دیہ اور سنسار کا بودھ ہے. اندریوں کا فنکشن نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ اندریوں کا جو فنکشن ہے وہ من کے سنکلپ, من میں سنکلپ پہلے ادے ہوگا, اندریاں بعد میں کرم کریں گی. اس لیے تو میرے من میں جب اچھا ہوتی ہے تب میں اپنی اندریوں کا اس اچھا کی پورتی کے لیے اپیوگ کرتا ہوں, ارتھات میری دیہ کرم کرتی ہے اور سنسار کا میں استعمال کرتا ہوں. تو ساری چیز جو ہے وہ کس پر نربھر ہے؟ یہ ساری چیز میرے اہنکار پر نربھر ہے. تو یہ جو اہنکار ہے, یہی مہا جی کہہ رہے ہیں کہ کرتا پن سے واسنا, واسنا سے سنسار, یہی اگیان ہے جیو کو آواگمن دکھ سار. کرتا پن کو یہ اہم کہتے ہیں, کرتا پن سے واسنا, اس کرتا پن سے تیرے اندر واسنا پیدا ہوتی ہے, واسنا سے سنسار. تو واسنا کے دوارا کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے اندر سنکلپ پیدا ہوتے ہیں, ارتھات من آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے. من کے اندر سنکلپ اٹھتے ہی آپ کی اندریاں ایکٹیو ہو جاتی ہیں, گیان اندریاں اور کرم اندریاں, جس کے دوارا شریر اور سنسار فنکشن کرتا ہے. تو اسی لیے جیو کا بندھن کہاں ہے؟ سارا کا سارا بندھن جیو کا اپنے ہی کرتاپن, اپنے ہی من, اپنی ہی اندریاں, اپنا ہی تن اور اپنے ہی سنسار میں یہ سارا بندھن پھیلا ہوا ہے. لیکن اس کا سروت کہاں ہے؟ स्रोत जीव का अपना ही अहंकार है कि मैं करता हूं। इसीलिए सारी अध्यात्म विद्या और सारे सत्पुरुषों का मार्गदर्शन केवल इस वास्ते है कि तुम इस बंधन को समझ लो। तो मेरा जहां तक होश है, मेरी जहां तक सोच है, सारा की सारा बंधन है। निर्बंधन चीज तो मैं जानता ही नहीं हूं, लेकिन इस देह के अंदर एक सत्ता है जो इन किसी के बंधन में नहीं है, जिसको हम जीवन सत्ता कहते हैं, जिसको हम आत्म सत्ता कहते हैं, या जिसको हम ईश्वर सत्ता कहते हैं। और सिंपल शब्दों में इस जिस्म के अंदर जान है ये मुझको पता है, मेरे जिस्म में जान है ये मुझे पता है, लेकिन मुझको ये पता नहीं है वो जान मुझ पर निर्भर नहीं करती है, मैं उस पर निर्भर करता हूं। अर्थात ईश्वरीय सत्ता मेरे ऊपर निर्भर नहीं करती है, मेरा जीवन ईश्वरीय सत्ता पर निर्भर करता है। मुझको यह भी पता नहीं है कि मेरा जो जीवन है, जिसको मैं संसारिक जीवन कहता हूं, वो पूरा का पूरा बंधन रूप है। क्यों बंधन रूप है? क्योंकि हर जीव, या यूं कहने की हर मनुष्य अपने ही अनुभव से जानता है कि जन्म लेने के बाद आज तक जितना भी जीवन व्यतीत किया है मैंने, मेरे मन में असंतोष कभी भी खत्म नहीं हुआ। वो कोई एक वर्ष भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया कि मैं दिल पे हाथ रखे कह सकूं कि पूरा वर्ष मैं संतुष्ट रहा, और ना ऐसा वर्ष जीवन में आने की उम्मीद है कोई। बुढ़ापा तो आ जाएगा जो मन की उमंग के कारण निराशा पैदा करेगा, मौत भी आ जाएगी जिसको सोच के मन भयभीत होगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब दिल आपका यह कहे कि एक वर्ष तो जरूर आएगा जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आपको पता है, अपने अनुभव से पता है कि वो वर्ष तेरे जीवन में कभी नहीं आने वाला। तो असंतोष लेकर यह जीव पैदा होता है, अर्थात देह धारण करता है। असंतोष लेकर संतोष के लिए जीवन भर कर्म करता है, लेकिन असंतोष लेकर ही इस देह का यह जीव त्याग कर देता है। इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं यह जीवन का कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीट फेलियर। क्योंकि संतोष की खातिर तुमने कर्म किए, संतोष की खातिर तुमने जीवन जिया, और वो वस्तु तुझको प्राप्त ही नहीं हुई, तू आइटम ही गिनता रहा कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो बड़ा चैन मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जानता है कि पढ़ने में कितनी बेचैनी है। तो पढ़ाई पूरी हुई तो यह सोचने लगा शादी हो जाएगी तो बड़ा चैन मिलेगा। शादी सभी की हो जाती है, चैन तब भी नहीं, बेचैनी के आइटम बदल जाते हैं। फिर जिस देह का भरोसा करके यह सुख भोगता है वो देह ही बूढ़ी हो जाती है, कहां से असंतोष मिलेगा? फिर मौत उसको याद आने लगती है, अब तो वक्त आ गया, अब तो जाना ही है, शायद 5 साल और जी लूं मैं। बूढ़ा आदमी यही सोचता है, शायद और 10 साल जी, लेकिन फिर भी मौत याद आती रहती है, अब वक्त आ गया, अब तो कभी भी जा सकती। तो इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं तूने कभी सोचा ही नहीं, तेरी देह के अंदर वो चीज मौजूद है जिसको प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए यह जीव संतुष्ट हो जाता है, जिसका नाम ईश्वर है, जिसका नाम आत्मा है, जिसका नाम चेतन सत्ता है। वो स्वयं आनंद रूप है, शांति रूप है, इसीलिए गुरु धारण किया जाता है कि गुरु के जीवन को देखकर ही ये बात समझ में आती है कि गुरु ने तो संसार में किसी भी सुख की प्राप्ति के लिए कोशिश ही कोई नहीं की। जिसने संसार में सुख प्राप्ति के लिए कोई कोशिश ही नहीं की, जिन सुखों के लिए मैंने पूरा अपना जीवन लगा दिया, उस गुरु के पास मैं जाने की कोशिश क्यों करता हूं? उस गुरु की बात सुनने की मेरे अंदर इच्छा क्यों होती है? उस गुरु के पास बैठकर मेरे मन में शांति क्यों हो जाती है? जो जीव भी, जो मनुष्य भी पूर्ण गुरु को जीवन में अपनाता है, उसके जीवन को बारीकी से देखता है, यदि भाग्य उसका ऐसा हो कि गुरु के संग रहने को मिल जाए, वो तो कोई करोड़ों में से कोई एक होगा। तब इस बात का निर्णय होता है कि जिस व्यक्ति ने संसार में किसी भी प्रकार का सुख तलाश करने की कोशिश नहीं की, उसको ऐसा क्या मिल गया कि हमसे ज्यादा वो संतुष्ट है। तो महाराज जी के जीवन को देखो जरा और शिष्यों के जीवन को देखो। महाराज जी मरघट में भी रात को बैठे होते थे, रात के 11-11 बज जाते थे, तब भी शिष्य उनके वहां से उठना नहीं चाहते। उस मरघट की मिट्टी में भी उनको सुकून महसूस होता था। तो ये बात सिद्ध करती है कि गुरु के अंदर वो एक चीज है जिसको शांति कहते हैं। तो उसका अनुभव उसी को होता है जो गुरु के पास फिजिकली बैठता है, या बुद्धि को निश्चय आता है जब ऐसे गुरु के जीवन को पढ़ता है, सुनता है, उस पर गहरा मनन करता है, तब गुरु की बात समझ में आती है। महाराज कहते हैं प्रेमी बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। तो बुद्धि की पवित्रता क्या होगी? क्या साबुन से उसको बुद्धि को धोया जा सकता है? तो बुद्धि किस चीज से अपवित्र है? बुद्धि संकल्प से अपवित्र है, या यूं कहना है कि इच्छा से अपवित्र है। हम सब जानते हैं इच्छाएं अच्छी भी होती है, इच्छाएं बुरी भी होती है, लेकिन अध्यात्म में इच्छा को ही बंधन कहा जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। सामाजिक मापदंड में तो अच्छी अच्छाई बुराई होती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इच्छा अपने आप में बुरी चीज, क्योंकि वो संकल्प को जन्म देती है और जीव संकल्प के कारण ही परेशान होता है। तो इसीलिए जब गुरु नाम सिमरन की बात करता है, ईश्वर भक्ति की बात करता है, तो वो एक ही चीज कहता है कि देखो तुमको मन का बंधन है, इस मन के बंधन से मुक्त होने के लिए तुमने नाम का आसरा लेना है, मंत्र का आसरा लेना है। और वो ये सिखाता है कि नाम और मंत्र जो है वो कौन सा, जिस पर गुरु ने मोहर लगाई हो। क्यों? क्योंकि वो नाम मंत्र शिष्य के लिए ईश्वर होता है। इसीलिए गुरु के नाम में, गुरु के मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि मन के संकल्प को 100% वो खत्म कर दे। इसलिए वो नाम, वो मंत्र आत्मरूप होता है। नाम ब्रह्मेति उपासते, इसलिए उपनिषद में आया कि नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि नाम ब्रह्म ही होता है या मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड होता है या ईश्वर का अवतार होता है। तो इसीलिए जब जीव को ये सारी विद्या समझ में आती है, ये एनालिसिस समझ में आता है, तब उसको समझ आती है कि मैं किस बंधन में हूं। मैं तो समझ रहा हूं संसार का बंधन है, संसार का कोई बंधन नहीं है। जीव को अपने ही संकल्प का बंधन है, अपने ही मन का बंधन है। संसार में बंधन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, वो बंधन नाम की वस्तु जीव के संग ही है। और इस बंधन से मुक्ति का रास्ता भी संग ही है, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, जिसको जीवन शक्ति कह रहे हैं, वो भी इस देह में मौजूद है। लेकिन मुझको यह पता नहीं है कि वो चेतन शक्ति है, वही मेरी देह को चला रही है, वही इस बाहरी सृष्टि को चला रही है, इसका मुझको पता नहीं। इसीलिए जब हम पूर्ण गुरु का आसरा लेते हैं और उनके वचनों का श्रवण करते हैं, तब ये बातें हमारे विश्वास में आती हैं। जब विश्वास में आती हैं, तब मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि अपने मन के संकल्प के कारण, अपने मन के चिंता के कारण मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, परेशान रहता हूं। अब उसको रास्ता भी पता रहता है कि गुरु की शक्ति ऐसी है, गुरु का मार्गदर्शन ऐसा है कि वो मुझको इस बंधन से मुक्त कर सकता है। इसीलिए मैं गुरु की बात मानकर उस प्रभु की याद गुरु के बताए तरीके से करने की कोशिश करता हूं। उसका नतीजा यह निकलता है कि धीरे धीरे मन के जो संकल्प हैं वो कमजोर पड़ते जाते हैं, और जो मेरी बुरी इच्छाएं हैं, धीरे धीरे मेरे अंदर ऐसा आत्मबल बढ़ता है कि बुरी इच्छाओं को मैं छोड़ने में समर्थ हो जाता हूं। और उसके पश्चात ऐसी स्थितियां दी है कि अच्छी इच्छाएं भी मैं छोड़ देता हूं, मैं निष्काम हो जाता हूं। मेरे अंदर जैसे जैसे निष्कामता बढ़ती है, वैसे ही वैसे यही मन जो संसार में लगता था, यही मन सिमरन में गहराई से लगने लगता है। और उस हालत में अंतर्यामी ईश्वर के जिसके बारे में मैं पढ़ता था, सुनता था, उस शक्ति का बोध मुझको अपनी इस देह में होने लगता है। तो वो शक्ति ही एक दिन आपको निर्बंधन कर देती है, या यूं कह लें कि बुद्धि को पवित्र कर देती है, या यूं कह लें कि मन को पवित्र कर देती है। बुद्धि को पवित्र करना, मन को पवित्र करना बात एक ही है। संकल्प से मुक्त कर देती है, या यूं कह लें कि अहंकार से मुक्त कर देती है। वही स्थिति हमारे पूर्ण समर्पण की है। और उस पूर्ण समर्पण में ही उस ईश्वर का आनंद इस जीव को पूर्ण रूप से अनुभव होता है। जिस आनंद को प्राप्त करके ये मन के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और खुद गुरु रूप हो जाता है, खुद ईश्वर रूप हो जाता है। वो है मोक्ष की हालत, वो है शांति की हालत। तो देखिए कि बाहर तो पूरे हमने कितने जन्म बिता दिए, शांति नहीं मिली, लेकिन जो गुरु की बात मानकर अंदर गया, अंदर का जीवन जिसने व्यतीत किया, उसको ऐसी शांति मिलती है जो दुनिया की कोई ताकत उसको भंग नहीं कर सकती। मौत भी उस आनंद को भंग नहीं कर सकती, क्योंकि जीव देह कभी था ही नहीं, ईश्वर कभी बंधन में नहीं था, जीव अपने ही मन के बंधन में था। इसलिए उस प्रेम में, ईश्वर के समर्पण में, इस मन की गति निर्मल हो जाती है, अर्थात मन संकल्प रहित हो जाता है। उस हालत में इस जीव को अनुभव होता है कि संसार नाम की सत्ता, देह नाम की सत्ता है ही नहीं, यदि कुछ है तो केवल ईश्वरीय सत्ता है। वो चेतन सत्ता जो अंदर अनुभव करता है, फिर सारे जगत में भी उसी को अनुभव करता है, तभी वो कहता है कि ये संसार यदि है तो केवल ईश्वर रूप है। जिसको मीरा कह रही है, जित देखूं उत और सखीरी सामने मेरे सामने। तो ये वो शांति है जो इस जीव को प्राप्त होती है जब ये शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कोशिश करता है। ओ ब्रह्म सत्यम।